दुनिया में अगर कोई जन्म लिया है तो कोई तो हमारा उद्देश्य होगा और कारण तो हम पैदा नहीं हुए। क्या उद्देश्य है इसको हर एक व्यक्ति को अपने से ही पूछना होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन की रेखाएं खुद बनानी है। जैसे हमारे सबके हाथों में रेखाएं हैं, क्या लगता है ये रेखाएं किसी और ने बनाई? जब हम पैदा हो रहे थे तो मम्मी कुछ बना रही थी, जैसे शादी के वक्त वो लड़कियों के मेहंदी लगाई जाती है तो रेखा कोई और बनाता है, मेहंदी कोई और लगाता है। तो क्या जब हम जन्म ले रहे थे तब हमारे माता पिता ने या कोई देवी देवता ने आकर के हमारे हाथ में रेखाएं रची क्या? नहीं ना। ये रेखाएं हमारे स्वयं के द्वारा निर्मित हुई, लेकिन कब निर्मित हुई, कैसे निर्मित हुई आज हमें पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि पास्ट की बहुत सारी बातें हमारा कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड अपनी मेमोरी में नहीं रख सकता। प्रीवियस बर्थ, पिछले जन्मों को हमारे कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। जैसे आपके घरों में किचन का सामान जब आता है, गेहूं, दाल, चावल, चीनी, नमक, मिर्च, आटा, जो कुछ भी, सारा के सारा आप किचन में नहीं रख सकते। डेली कंज्यूम के लिए सारा के सारा आप किचन में नहीं रख सकते हो। आप थोड़ा सा किचन में रखते हो, उसमें से पार्ट्स निकाल करके और बाकी का सारा स्टोर में रख देते हो, ऐसे ही करते हो ना। जब यहाँ वाला खाली हो जाता है तब स्टोर से निकाल करके यहाँ रख देते हो, ऐसा ही करते। ये माइंड भी ऐसा ही करता है। पास्ट की बहुत सारी बातें हैं बट इस समय वो सब हमें याद नहीं है, वो सब हमारे माइंड के स्टोर हाउस में पड़े हैं। और वो जो स्टोर हाउस है उसको मनोविज्ञान अलग नाम देता है, जैन शास्त्र अलग नाम देते हैं। जैन शास्त्र कहता है कि प्रीवियस डिजायर्स, थॉट्स और मन की सारी संरचनाएं हमारे कार्मण शरीर में स्टोर होती। सुना ना आपने, शरीर कितने? 5। औदारिक, दिखने वाला, वैक्रिय, अभी दिखलाई नहीं पड़ रहा, आहारक, वो भी दिखलाई नहीं पड़ रहा, तेजस, वो भी दिखलाई नहीं पड़ रहा, और कारण। कार्मण को लास्ट में क्यों रखा? क्योंकि कार्मण मूल है, बेस है, वो बेसिक बॉडी है हमारी। कार्मण के आधार पर तेजस, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, ये सारे शरीर बनते हैं। तो हमने रेखा है कब बनाई पता नहीं, वो मेमोरी कहाँ गई? कार्मण शरीर में स्टोर है। मनोविज्ञान कहता है वो हमारे अचेतन मन में और अवचेतन मन में स्टोर है। इस बाहर दिखलाई पड़ने वाले मन में नहीं, लेकिन है। स्मृतियां खोती नहीं है, यादें खत्म नहीं होती, अंदर ही अंदर गुप्त रूप से संचित रहती है, तो हम सबके भीतर संचित है। लेकिन आज चाहे वो मेरे लिए, हमारे लिए अचेतन का पार्ट हो, कर्मशैली का पार्ट हो, लेकिन किसी दिन वो मेरे प्रेजेंट का थॉट था, वो मेरे प्रेजेंट का विल था, संकल्प था, सोच था, इच्छा थी। ओके, तो आज जो हमारी सोच है वो कल, आने वाले कल में स्टोर हाउस में चली जाएगी, लेकिन वहां से भी रिजल्ट दे रही होगी, रेखाएं बना रही होगी। जैसे आज जो रेखाएं दिखलाई पड़ती है वो हमने पहले कभी अंकित की थी, पहले की सोच से बनी, ऐसी आज की सोच से हमारी आने वाली रेखाएं बन रही। और चूंकि हम सबकी सोच, हम सबकी भावनाएं, हम सबके विश्वास हमारे जीवन को निर्मित करते हैं, इसीलिए मनुष्य को ये शिक्षा दी जाती है कि वो अपनी सोच को, अपने विश्वास को, अपनी भावनाओं को बोध पूर्वक चुने, समझ पूर्वक चुने। क्योंकि मनुष्य के पास समझने की, सीखने की क्षमता है। गाय, भैंस, पशु पक्षी, इन सब की स्कूलिंग नहीं होती, इन सब के टीचर्स नहीं होते, इन सब की क्लासेस नहीं होती, इन सबको ना तो शिक्षा दी जाती है, ना दीक्षा दी जाती है, ना धर्म सिखाया जाता है। ऐसा क्यों बोला? सारा कुछ काम मनुष्य को ही क्यों करना पड़ता है? ये बड़ा गलत हो गया। सारी जिम्मेदारी इंसानों की क्यों? दो भैंस लड़ जाए, एक को मार दे तो किसी एक को जेल नहीं होने वाली, दो कुत्ते लड़े तब भी उनके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं होने वाला, लेकिन दो इंसान लड़े, एक दूसरे को जान से मार डाले, तो उनके ऊपर तो कोर्ट केस होगा ना, और उनको जेल में भी डाला जाएगा, सजा भी दी जाएगी, और उनसे उम्मीद भी की जाएगी कि वो सुधर जाए, और अगर नहीं सुधरे तो उनकी सजा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो इंसान के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां, जानवर के ऊपर नहीं है। कितना अच्छा होता ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती, ठीक है क्या? ना पढ़ना पड़ता, ना स्कूल जाना पड़ता, ना धर्म क्लास में जाना पड़ता, ना समझ करनी पड़ती, कितना अच्छा होता ना, ठीक था? नहीं ना, बराबर। किसी रोज हम भी जब जानवर थे ना, हम इंसानों को देख के सोचते थे कितना अच्छा आदमी, पढ़ता है, सबकी सेवा करता है, बहुत सीखता है, बहुत समझदार है, देवताओं से बातें करता है, भगवान की आराधना करता है, मंदिर बनाता है, भगवान की भक्ति करता है, ध्यान लगाता है, और एक दिन स्वयं परमात्मा हो जाता है। ओ काश मैं भी इंसान हो जाऊं। हमने तब सोचा था, विश्वास नहीं होता ना, क्योंकि भूल गए ना, तो विश्वास कैसे होगा? आज भी कितने लोग हैं ना, ऐसे गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, गाने गाते हैं, पंख होती तो उड़ती, गाते यानी वो पंख चाह रहे हैं, पक्षी बनना चाह रहे हैं। सोचते कि पक्षी होती तो उड़ के चली जाती। ठीक है, अरे भैया वो पक्षी सोच रहा है काश इंसान होता तो चल भी सकता, उड़ भी सकता, तैर भी सकता। तैरने वाला उड़ नहीं सकता, उड़ने वाला तैर नहीं सकता, लेकिन एक आदमी तो है, जमीन पे भी चल सकता है, पानी में भी तैर सकता है, और आकाश में फ्लाई भी करता है ना। आकाश में फ्लाई भी तो करते हैं, उड़ता भी तो है आदमी, नहीं? लोग तो उड़ने के लिए कहां कहां जाते हैं, साउथ अफ्रीका में जाते, जा जा करके उड़ने का पॉइंट है उनके पास में, जहां से उड़ सके थोड़ी देर, फ्लाइट में जाते हैं, उड़ तो रहे हैं। आदमी बहुत कुछ काम कर सकता है। जब हम पक्षी थे, हम चाहते थे आदमी बने, जब हम आदमी बन गए तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ गई, और जैसी जिम्मेदारियां आई तो हम सारे लोग ये सोचते हैं पढ़ना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, आखिर क्यों? तो ध्यान दो, इसलिए क्योंकि मनुष्य ही है जो सीख सकता है, जो समझ सकता है, जो पढ़ सकता है, जो बढ़ सकता है। अब मनुष्य अपनी रेखाओं को निर्मित करता है, मनुष्य अपना भविष्य चित्रित करता है। कैसे करता है? विचारों से करता है, भावनाओं से करता है, और विश्वासों से करता है। विचार से ज्यादा प्रभावी है भावना, और भावना से ज्यादा प्रभावी है उसके विश्वास। उसके विश्वास, जिसका जैसा विश्वास होता है वो वैसा ही हो जाता है। ये विश्वास क्या चीज है? विश्वास क्या चीज है? एक बालक था, बचपन में, जैसे आप सब बालक यहाँ बैठे हो, आप भी कुछ ना कुछ गेम्स खेलते हो ना, और आपके गेम्स अक्सर कैसे होते? आप आज तो सिर्फ मोबाइल पे खेलते हो, तो आपके गेम्स कैसे हैं? डिजिटल गेम्स हो गए। चलो उससे पहले जब डिजिटल गेम्स नहीं खेल रहे थे तब, अथवा डिजिटल गेम्स ना खेलो तो किस तरह के गेम्स खेलते हो? हॉकी, क्रिकेट, लुका छिपी है ना, खो खो, हाँ, छिपके का पानी, ये क्या होता है? लोमड़ी का गेम, लंगड़ी टांग, ओ, और हाँ, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ओके, इस तरह के गेम्स खेलते हो। बहुत पहले जमाने में जाओ तो ये क्रिकेट, इस टाइप के गेम्स बहुत कम थे, और कुछ गेम्स ऐसे थे ही ना जो आज भी है, पहले भी थे। लेकिन वो जो बालक था ना, वो बचपन में गेम्स खेलता था। क्या खेलता था? अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करता, उन सबको बैठा था और कहता, हमारा दरबार सजा है, हम राजा हैं, हाँ, हमारे सामने अभियुक्त लाया जाए, किसने अपराध किया। तो दो बच्चे, एक चोर बनता, एक पुलिस बनता, लेकर क्या था कि राजा अधिराज, इस चोर ने यहाँ पे चोरी करी, ये अपराध किया। वो कह, अच्छा, तूने चोरी करी, क्यों चोरी करी? वो कहता, जी सर, खाने में, खाने के लिए घर पे नहीं था, ये वो। तो खाने पे नहीं था तो तुम मेहनत क्यों नहीं करते? वो राजा उस चोर को भी डांट लगाता, उस पुलिस को भी समझाता, और चोर को कोई ना कोई सजा देता। ठीक है, और फिर वो राजा तरह तरह के ऐसे सारे गेम्स के अंदर राजा बन करके सारे गेम्स खेलता। अब कभी कोई किस्सा सामने आ रहा है, कभी कोई किस्सा सामने आ रहा है, और वो हर किस्से को, हर समस्या को सुलझाता चला जाता था। और उस बालक को वहां से गुजरते हुए एक ब्राह्मण ने देखा। उस ब्राह्मण ने सोचा कि इस बालक को, जिसके घर में खाने के भी दाने की किल्लत पड़ती है, जिसके घर में इतनी गरीबी है, और वो राजा बनकर के गेम खेल रहा है, तो ब्राह्मण ने सोचा मैं भी जरा जाऊं परीक्षा लो। तो ब्राह्मण उनके पास गया, बालक के पास में, और बोलता है कि राजन मैंने कुछ बहुत अच्छा कार्य किया है, उसने कुछ भी बहाना बनाया, मैंने ये कार्य किया है, आप मुझे कैसा पुरस्कार दोगे? राजा कहते जाओ जाओ हमारे गांव के अंदर जितनी अच्छी अच्छी गाय है सब तुमको दे। वहाँ गाय वाय कुछ नहीं होती है, वो मिट्टी के बनाते ना, जैसे लोग गुड्डे गुड्डे तुम बनाते हो वैसे, वो कि जाओ जाओ सब गाय तुम्हें दे। तो ब्राह्मण कहता है लेकिन ये सारी अच्छी गायें का मालिक मैं थोड़ी हूँ, कोई और लोग है, मैं कैसे ले सकता हूँ? तो वो बालक जो राजा बना हुआ है वो कहता है अरे हम राजा हैं, हमने आपको आदेश दिया ले जाओ। और फिर राजा जब बोलेगा तो उसके सामने कौन बोल सकता है? वीर भोगिया वसुंधरा, जो वीर होता है वो जैसा चाहे वैसा वसुंधरा से ले, हमें कौन रोकेगा? ब्राह्मण कहता है इतना विश्वास एक बालक के अंदर? तो ब्राह्मण उसकी परीक्षा लेने के लिए और कुछ युक्तियां लेता है, और कुछ युक्तियां लगाता है, और कुछ समस्याएं ला के रखता है, और वो बालक उन सारी समस्याओं का एकदम सही निर्णय दे देता है, सही समाधान देता है। तो ब्राह्मण पूछता है ये बालक है कौन, क्या नाम है? तो नाम पता लगता है कि इस बालक का नाम है, कौन बताएगा? नहीं सुना ना, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। कैसे बना वो राजा देखो जरा, बचपन से ही वो राजा की तरह सोचता था, राजा की तरह बोलता था, विश्वास कितना था उसके अंदर में। हाँ? उस विश्वास ने उसको राजा बनाया। हमारा क्या विश्वास है? जो हमारा विश्वास है वही हमारा भविष्य है। विश्वास विचार से भी गहरी शक्ति रखता है, अधिक ताकत रखता है। विचार बदलते रहते, विश्वास नहीं बदलते इतनी जल्दी। कैसे विश्वास हो? आप देखो सिकंदर जब अपने देश को छोड़ के निकला, उसके पास कौन सी सबसे बड़ी ताकत थी? अगर तलवार की ताकत ही बड़ी ताकत होती है तो उससे ज्यादा अच्छी तलवार पास तो और भी लोग थे। अगर सेना की ताकत ही बड़ी ताकत होती है तो भारतवर्ष जैसे इतने बड़े देश और भी ऐसे कितने सारे देशों में वो गया है जहां बहुत ज्यादा सेनाएं थी, लेकिन उसके पास कौन सी सबसे बड़ी ताकत थी? विश्वास की। विश्वास की ताकत थी कि मैं सिकंदर महान हूं और पूरी दुनिया में अपनी ध्वजा फहराने वाला हूं, विश्व विजेता हूं। उस विश्वास के साथ चल। ईसा मसीह, बड़े बड़े पंडित पुरोहित धर्मगुरु यहूदी लोग जहां रहते हैं उनके बीच में से गुजरता हुआ बोलता था मैं ईश्वर का बेटा हूं। जो कहते पागल हुआ है, ईश्वर का भी कोई बेटा होता है क्या? कहते मैं हूं, ईश्वर ने मुझे भेजा है, मैं ही दूध हूं। विश्वास। तो किसी ने कहा तुम्हें सूली लगा दी जाएगी, तुम्हें फांसी मिलेगी, तो क्या हुआ? मैं वापस जीऊंगा, विश्वास, मैं जीऊंगा। तो जिया वो। भगवान महावीर जब घर से निकले, इधर तो राजमहल छोड़ा और इधर उनकी जिंदगी में संकट आने शुरू, हर दिन नया संकट, नए नए रूपों में संकट आ रहा। लेकिन महावीर के पास क्या था? आत्मविश्वास। इंद्र आया भगवान महावीर के पास, बोला भगवान ये क्या आपके ऊपर इस तरीके के संकट आ रहे हैं? आप क्या हो ये मनुष्य जानते ही नहीं है, ये आपकी महिमा को नहीं पहचानते, ये आपके ज्ञान की गरिमा से अनभिज्ञ है। मैं आपकी सेवा में रहूं, आपके चरणों की सेवा में रहूंगा, और जो भी आपको कष्ट पहुंचाएगा मैं उसको पलट के जवाब दूंगा, क्योंकि आप तो जवाब देते ही नहीं हो। आप तो सब कुछ सहन कर लेते हो, लेकिन ऐसा क्यों मेरे रहते आप क्यों सहन करो, मैं सबको जवाब दे दूंगा। इंद्र ने महावीर का फेवर किया और बोला कि मैं आपकी सेवा में रह करके आपके ऊपर आने वाले संकटों को दूर करूंगा। महावीर क्या बोले? नहीं इंद्र, हमें आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें अपने आप पर भरोसा है। अभी आपने प्रवचन के प्रारंभ में एक श्लोक सुना, धम्मो मंगल मुक्तिच्छं अहिंसा संयमो तव देवा गीतम नमम संति जस धम्मे सयामन। देवता भी उसको नमन करते हैं जो अपने धर्म में रहता है। ये घोषणा महावीर ने की, ये घोषणा प्रभु महावीर ने की और तब की जब जनता देवी देवताओं की पिछलग्गू थी, देवी देवताओं के नाम से डरती थी और देवी देवताओं को राजी करने के लिए तरह तरह के यज्ञ हवन पूजा पाठ कर्म कांड अनुष्ठान किया करती थी। अतः श्रमण महावीर ने कहा, तुम क्यों देवी देवताओं के ऊपर इतने आसक्त हो रहे हो, क्यों तुम देवताओं से डरते हो, क्या डरने की आवश्यकता है, तुम अहिंसा में आओ संयम में आओ तप में आओ, देवता तुम्हें नमस्कार करने आएंगे, क्योंकि ये देवता खुद मानव बनना चाहते हैं और ये मानव तो देवताओं को अपना भगवान मान रहा है जबकि तेरा ईश्वर तू स्वयं है, तेरा ईश्वर तू स्वयं है, अप्पा सो परम अप्पा, तू ही परमात्मा है। ये बात समझ भगवान महावीर ने गांव गांव कही, बहुत बहुत लोगों को समझाया कि तुम डरो मत देवताओं के नाम से। और तब डराया जाता था, तूने अगर मेरा कहना नहीं माना तो देवता का श्राप तुझे लगेगा, ऐसे लोग एक दूसरे को बोला करते थे, देवी देवताओं के नाम से श्राप दे दिया करते थे। तब भगवान ने जनता को कहा, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। महावीर से पहले बहुत वर्षों पहले आदमी तो सदा ही डरपोक रहा है। जब कृष्ण बालक थे, छोटे बच्चे थे, वहां नंद के पास रहते थे, कौन सी नगरी थी वो, गोकुल में, ब्रज में, माँ यशोदा के साथ, सारे गांव के लोग मोस्टली अहीर जाति के थे। अहीर जाति बोले तो जो आज ग्वाला दूध ला रहा है, बेचता है, गाय पालता है, उसको अहीर जाति बोलते हैं। तो उनके वहां दूध होता और दूध शहरों में बिकने के लिए जाया करता था। जब शहरों में बिकने के लिए दूध जाता तो कंस का राज्य पास ही था, उसने लगान लगा रखा था कि जितना भी दूध का उत्पादन होगा इतना दूध हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देना ही पड़ेगा। तो सब लोग कंस से डरते थे, सब उसी का कहना मानते। किसी दिन बहुत बारिश हो गई, दूध नहीं पहुंचा नगरी में, तो वहां से आरक्षक आ गए, ये क्या, पुलिस कोतवाल सब लोग पहुंच गए, सेना पहुंच गई कि हमारे यहाँ दूध क्यों नहीं पहुंच रहा। बोले, इतनी बारिश में हम दूध लाके कैसे दे सकते, नदियां तूफान पे है, तूफान पे हम बाहर नहीं निकल सकते। बोले, तो फिर हम बंदी बना लेंगे, आक्रमण करेंगे। सब लोग डर गए, डर के मारे सोचे अब क्या करे क्या ना करे। कंस का खौफ सबको था। तब श्री कृष्ण एक छोटा सा बालक था, उम्र कितनी होगी तुम्हारे में सबसे बड़ा है, 14 साल 15 साल 16 साल का भी रहा होगा, शायद 16 का भी नहीं रहा होगा वो, तब 16 साल में तो उसने शादी में हरत कर लिया था, तो 16 से ही छोटा था। और खड़ा हो गया सारे गांव वासियों के सामने, किसी को डरने की जरूरत नहीं, किसी को छुपने की जरूरत नहीं, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, आए कोई मेरे गांव वासी पर कोई हाथ उठा के तो देखे। सुनी ना कहानी, उसने अपनी अंगुली पर पर्वत उठा लिया, अंगुली पर पर्वत उठा लिया, इसका मतलब क्या था कि उसने गांव वासियों की सुरक्षा के लिए पूरा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। एक 14 साल का बालक इतना बड़ा जिम्मा कि पूरे गांव की रक्षा मैं करूंगा, और करके दिखाई। और कंस के जितने सैनिक आए थे वे सब कृष्ण की उस आवाज और कृष्ण की युद्ध कला के आगे डर के कुछ तो वहीं ढेर हो गए और कुछ लौट करके वापस जाके बोले कि भाई वहां पे गांव को संभालना हमारे हाथ की बात अब नहीं रही। वहां पर कोई तो एक बालक है जिसको सारी जनता प्यार करती है और उसने सबको रोक रखा है कि कोई भी अब से नगरी में फ्री का दूध देने नहीं जाएगा। उसके बाद से उसने दूध दही शहर में भिजवाने बंद कर दिए। आपने सुना ना कि कृष्ण वो मटकियां फोड़ता था। पता क्यों मटकियां फोड़ता था? वो मटकियां फोड़ता था जो मटकियां कंस के दरबार में पहुंचती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट जाती थी, और लोगों को मना करता वहां क्यों, तो जानबूझ करके उसको जूझा कर देता ताकि राज दरबार तक ना पहुंच सके। जानबूझ करके वो बीच मारे वो मटके को फोड़ डालता था कि नहीं तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। लोग डरते थे नहीं जाएंगे तो हमारे घर पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूं। विश्वास जनता को उसने अपने विश्वास के बल पे भयमुक्त किया। इसीलिए कृष्ण को सबने सिर आंखों पे लिया, राजा बनाया, भगवान की तरह पूजा। था तो वो हमारे जैसी बालक ना, लेकिन क्या ताकत थी उसके पास विश्वास की। हमारे पास है ये सोचना है, हमारा जैसा विश्वास है हम वैसे बनने वाले। कैसा है हमारा विश्वास? कैसा है हमारा विश्वास अपने आप पर, अपने धर्म पर? क्योंकि अपने आप पर होना अपने धर्म पर होना है। कमजोर वो कह रही है कमजोर है हमारा विश्वास, कमजोर है तो हम जैन नहीं है। जैनी वह जो न डरता है न डराता है, जैनी वह जो जागृत होकर जीता है, आंखें खोल के जीता है, जो भय मुक्त होके जीता है। नमो जिनानम बोलते हो, खाली बोलते ही हो। नमो जिनानम जिये भयानम। हमें अपने विश्वासों को चेक करना है, हमारा विश्वास क्या है, विश्वास कैसा है, हमारी निष्ठा कैसी है। भक्त प्रहलाद को देखो, उसका पिता हिरण्यकश्यप क्या बोला, नारायण जैसा कुछ नहीं होता। भक्त प्रहलाद बोलता है नारायण है या कहाँ है, हो ही नहीं सकता, अगर है नारायण तो बचा ले तुझको, डाल दिया आग में, लेकिन वो नहीं जला, गिरा दिया पर्वत से लेकिन नहीं मरा। क्यों? क्योंकि भक्त प्रहलाद के पास निष्ठा थी अपने इष्ट में, अपने परमात्मा में। खुद से पूछो मेरा विश्वास क्या है। अगर आपका विश्वास नहीं है आज बना लो, आज से निर्मित करो, कमजोर विश्वास हटा दो, आत्मविश्वास को दृढ़ करो। और आत्मविश्वास को दृढ़ करने का पहला सूत्र ये हो, मैं योग्य हूं। क्या हूं? हो ना, कि कमजोर हो? अभी वो बोली कमजोर हूं। क्या बोलोगे, मैं कमजोर हूं बोलोगे, मैं योग्य हूं बोलोगे? मैं योग्य हूं पहला सूत्र, ठीक है। और दूसरा सूत्र, जैसा मैं योग्य हूं वैसे ही इस धरती के सभी इंसान योग्य है, सभी प्राणी योग्य है। जैसा मैं योग्य हूं वैसे ही सभी प्राणी योग्य है, सभी इंसान योग्य है, ठीक है। बोल पाओगे? अरे वाह, नमोकार मंत्र का अर्थ आभार प्रार्थना, नमोकार आभार प्रार्थना की या छोड़ दे, की छोड़ दे, की छोड़ दे, ऐसे ही ना। अगर आपको समझ आएगा तो आप वैसा जियोगे, नहीं समझ आएगा तो जैसे और लोग जी रहे हैं ना वैसे ही जियोगे। आपको योग्य होना है ना तो योग्यता को नमन करना होगा ना, योग्यता को दृष्टि में बसाना होगा, तभी तो योग्य बनो। तो मैं योग्य हूं ये विश्वास करो और जैसा मैं योग्य हूँ वैसे सभी योग्य हैं। और परमात्मा उसको कहते हैं, अरहंत उसको कहते हैं जो परम योग्य है, जिसने अपनी सारी योग्यताएं उजागर की, वो अरहंत है। तो हमारा नमन एकाध देवी शक्ति को नहीं है, एकाध देवी देवता को नहीं है, हमारा नमन किसको है? परमात्मा को। कौन परमात्मा? जो परम योग्य है, जिसने अपनी सारी योग्यताएं उजागर कर ली, उस इंसान को हमारा नमन है, उस भगवान को हमारा नमन है जो अपने आप में पूर्ण योग्य हुआ। अगर हमें पूर्ण योग्य होना है तो उसको नमन करते हुए रोज प्रार्थना करो, मैं योग्य हूं और आपकी कृपा से मेरी योग्यताएं और उजागर हो रही, आपकी कृपा से मेरी योग्यताएं बढ़ रही, प्रकट हो रही, इसलिए आपका आभार आभार। योग्यता की उपासना करो और तब जिनसे भी मिलो उनकी कमियां देखने की बजाय उनमें रही हुई योग्यता को देखो और अपने विचारों में विश्वास भरो, विश्वास भरो आपको क्या बनना है, क्या बनना है? परमात्मा, परम योग्य आत्मा। परमात्मा यानी परम योग्य आत्मा, और वो परम योग्य आत्मा तब तक नहीं बन सकते जब तक मन में कमजोरी का एहसास है। ओके? और कमजोरी का एहसास किन कारणों से आता है? नेगेटिविटी, डर। कमजोरी का एहसास जिन भी कारणों से आता है उन सारे कारणों को समझ के हटा दो। डर को हटाना ही होगा, जब तक डर को जीतोगे नहीं योग्य नहीं हो पाओगे। योग्य होने का पहला शर्त यह है, जिस चीज से डर लगता है उस चीज पे जाकर के, वही जाकर के वही कार्य करो जिस पे डर लगता है, लेकिन डर को जीतो। एग्जाम से डर लगता है तो एग्जाम दो, स्टेज पे बोलने से डर लगता है तो स्टेज पे जाके बोलो। जिस चीज से खौफ है आपको वो खौफ को निकालो और योग्य बन जाओ और विश्वास करो अपने में। लेकिन बात यह है, अभी हम अपने को उतना परम योग्य तो नहीं पाते जितना कि परमात्मा है, तो क्या करते हैं हम? तो हम परमात्मा पे भरोसा करते हुए उस परमात्मा को अपने यहाँ पे धारण करते हैं। आपने देखा जब भी हम गुरु को प्रणाम करते हैं, झुकते हैं तो माथा झुकाते हैं, और जो माथा झुकाते हैं उसके बाद में यहाँ लगाते हैं ना, बड़ों को भी प्रणाम करते हैं तो उनके चरण को स्पर्श करके हाथ को यहाँ लगाते हैं, लगाते हैं। मंदिर भी लोग जाते हैं, मंदिर में परिक्रमा करने के बाद प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद में जमीन के स्पर्श करके यहाँ लगाते हैं। यहाँ क्यों? यहीं पर क्यों? ये वो स्थान है आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं। यहाँ से हम अपने जीवन को संचालित करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम किसको रखेंगे? भगवान को, परमात्मा को, परम योग्य आत्मा को, और परमात्मा का ज्ञान देने वाले गुरु को। तो जिसके जिंदगी में यहाँ पे गुरुदेव विराजमान है, भगवान विराजमान है, वह एक योग्य प्लस वन परमात्मा उसके साथ जुड़ गया वो एक और एक मिलकर के पूर्ण हुआ, 11 हुआ, कंप्लीट हुआ। अभी हम जानते हम कमजोर है लेकिन परमात्मा तो पूरा है ना, तो हम परमात्मा को अपने अंदर धारण करें तो हम योग्य हो जाते हैं, ठीक है? लेकिन परमात्मा को अपने अंदर धारण किया जैसे भक्त प्रहलाद ने किया, जैसे चंदन बाला ने किया, जैसे राजीमती ने किया, जैसे श्री कृष्ण ने किया, जिस जिसने भी परमात्मा को अपने भीतर धारण किया वो परमात्मा हुआ। अब देखो हमने अपने भीतर किसको धारण किया? टीवी देखते हो तो टीवी के कलाकार अंदर चले जाते हैं, मूवी देखते हो मूवी के कलाकार अंदर चले जाते हैं, जिस फ्रेंड के साथ में प्यार हो जाता है वो अंदर चला जाता है। हमारे अंदर कौन जाता है? भगवान तो कहीं जाता नहीं, बाकी सारे लोग चले जाते हैं। ऐसे ही ना। और जब लोगों से धोखा खाते हो, दुख आता है, परेशान होते हो, तो देवी देवताओं के पास चले जाते हो और देवी देवताओं को अपने अंदर ले जाते हो। नहीं, अपने अंदर ना इंसान को शरीक करना, ना देवता को शरीक करना, अपने अंदर शरीक ही करना है तो परमात्मा को शरीक करो, परम योग्य आत्मा को, अरहंत और सिद्ध को शरीक करो और उनको यहाँ पे विराजमान करो, गुरु को शरीक करो, गुरु को यहाँ पे विराजमान करो। और गुरु यानी गुणों का पिंड, गुरु यानी व्यक्ति नहीं, गुणों का पिंड, उस गुणों के पिंड को यानी गुरुदेव को, सदगुरु के ज्ञान को यहाँ पे विराजमान करते हुए रोज ऐसी प्रार्थना करो कि हे सदगुरुदेव, बोलेंगे आप मेरे आज्ञा चक्र पर सदा विराजमान रहे, मैं सदा आपके ज्ञान में रहूं, मेरे जीवन के सारे निर्णय आपकी आज्ञा में घटित होवे, मैं पूर्णतया आपको समर्पित हूं। जय हो। इस प्रार्थना के द्वारा अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ो और परमात्मा को अपने भीतर विराजमान करो। देखो, मंदिर में जब तक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक उस मंदिर की कोई वैल्यू है क्या? लोग आएंगे क्या? पूजा आरती होगी क्या? धूप दीप बत्ती होगी क्या? कुछ भी नहीं होगी। जब तक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हुई तब तक मंदिर मंदिर नहीं। इसी तरह से यह शरीर रूपी मंदिर, जब तक परमात्मा रूपी मूर्ति की अंदर प्रतिष्ठा नहीं हुई तब तक इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इसको कितना भी नलाओ, धुलाओ, खिलाओ, पिलाओ, सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, लेकिन इसी के अंदर परमात्मा को विराजमान कर दो। यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, कहीं भी करो, अपने भीतर परमात्मा को विराजमान हो कर लो। उसके बाद आप विश्वास से भर के जियोगे, कमजोर नहीं रहोगे, क्योंकि परमात्मा कमजोर और कमजोर के पास भी नहीं है। गॉड हेल्प दोज, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान किसके साथ है? जो खुद अपने साथ है, और जो खुद कमजोर है उसके साथ भगवान भी नहीं है ना। जो आपके साथ भगवान है, अगर आपके पास अपना विश्वास है तो पहली चीज है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास हो और फिर परमात्मा विश्वास हो, और परमात्मा और आत्मा दोनों को एक बना लो तो ही इस जीवन में आप परमात्मा होंगे। अन्यथा हम परमात्मा हुए बिना ही अगर इस शरीर को छोड़कर चले गए तो हमारा ये जीवन सार्थक नहीं हुआ। और ऐसा नहीं हो, हमें हमारा जीवन, क्योंकि हम इस जीवन में आए हैं उद्देश्य से आए हैं, और वह उद्देश्य है अपने भीतर के परमात्मा को जागृत कर लेना, और वो तभी होगा जब परमात्मा की आज्ञा में हम हों और परमात्मा हमारे भीतर विराजमान हो। अब आज से देखो, आप अकेले हो या आपके साथ आप परमात्मा भी है? आंख बंद करके महसूस करो, 10 मिनट तक सब लोग आंख बंद करके महसूस करो। जय हो।